चैनल की नाजरीन, इस वीडियो क्लिप में तराजू पर मुर्गी तोली जा रही है। अभी मुर्गी का वजन कम है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही इस शख्स ने दाईं तरफ से वेट कम किया तो वजन बराबर हो गया। अब एक बार फिर इस शख्स ने बाएं जाने मुर्गी रखी और दाएं तरफ वेट रखा और जैसे ही वेट को थोड़ा आगे किया वजन बराबर हो गया, और अब जैसे ही वेट को पीछे की तरफ किया मुर्गी वाली साइड का वजन कम हो गया। शायद तराजू खराब है। अब इस शख्स ने तराजू से सारी चीजें वापस निकाली, अब तराजू को बराबर किया। एक दफा फिर इस शख्स ने बाएं जाने मुर्गी रखी और दाएं तरफ वेट रखा। अब जैसे ही ये वेट को आगे करता है तो मुर्गी वाली साइड ज्यादा हो जाती है, और वेट जैसे ही पीछे करता है तो मुर्गी वाली साइड कम हो जाती है। आखिर ये मामला क्या है? निगरानी शूरा, आप इरशाद फरमाइए।
मेरे प्यारे बापा जान, आप इरशाद फरमाइए।
इन तराजुओं का जरा उसूल होता है कि कहाँ बाट रखना है और कहाँ वो चीज रखनी है। जैसे कि आपको शायद तजुर्बा होगा उसका, स्केल बात, स्केल जो होता है कि अगर उसके एकदम आप आगे तक अंगूठे ले जाएंगे अपने, जो जो आप पीछे आते जाएंगे ना वजन कम होता जाएगा। तो मेरा अपना तजुर्बा ये है। फिर अगर बीचों बीच रहेंगे तो वजन कुछ होगा, अब अगर फैल जाएंगे आप तो शायद कुछ ना कुछ वजन में फर्क आ जाएगा। तो ये स्केल के इस तरह के मामलात होते हैं। तो मुझे समझ में ये आता है कि सेंटर में बाट होंगे, सेंटर में वो माल होगा जिसको तोला जाए, तब जाकर वजन सही बैठे। एक मतलब समझ में ही आता है।
तो इस तरह इसका मतलब ये कि जो दुकानदार माल बेचते हैं ये इस अंदाज पर भी बदकिस्मती के साथ डंडी मार सकते हैं।
डंडी क्या है, डंडा मारते हैं,
डंडा मारते
जैसे कि ये जब बेचेंगे ना तो ये इस स्टाइल से तोलेंगे कि सामने वाला देखेगा कि तो बराबर है, पूरा हो गया और जाएगा कम, और जब ये खरीदेंगे तो फिर इस स्टाइल से तोलेंगे कि सामने वाला देखेगा बराबर तो है लेकिन वो ज्यादा जा रहा होगा, जैसे अभी हमने मुर्गी के गोश्त में देखा। तो ये धोखे के अपने अपने इनके अंदाज होते हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, जो भी उसूल बनाए गए वजन के उसके मुताबिक तोलना चाहिए।
इसकी आप तरदीद करते हैं कि आपका कोई ऐसा तावीज नहीं है जो मोबाइल के लिए हो जाए?
मैंने अभी तक ये ना इस पर गौर नहीं किया। नक्शे हरकारा तो हरकारा के माना ही हर काम के लिए, तो नक्शे हरकारा उसमें क्या जा सकता है अंदर मोबाइल फोन में?
फोटो खींचकर अंदर महफूज हो जाएगा और क्या होगा
ना अंदर। अच्छा
अच्छा, अगर अंदर में इसको अच्छा सा बनाकर उसको मोबाइल फोन में कहीं अंदर में चिपका दें या लगा दें, हो सकता है ऐसा करना चाहे तो?
हर तो एक में तो कैमरा होता नहीं है हर मोबाइल फोन में।
नहीं, जैसे कि ये मोबाइल फोन है ना, अब ये है मोबाइल फोन, ठीक है, अब इसके अंदर कवर तो है, अब इस कवर के अंदर अगर ये कोई ऐसा रख दिया जाए, क्योंकि मोबाइल वाकई महंगे होते हैं, टेंशन है लोगों को, परेशानी है, और बहुत लूटे जाते हैं मोबाइल, तो अगर इसमें कोई उम्मत के लिए ऐसी आपकी तरफ से कोई आसानी हो जाए या कोई से रूहानी इलाज नसीब हो जाए कि अगर ऐसा को अंदर रख दिया जाए, यही हो सकता है, अल्लाह ताला ही हिफाजत करने वाला है।
हाँ, वो 34 का नक्श बनता है, नक्श हरकारा इसका नाम है, हर काम के लिए, हरकारा के माना यही है, हर काम के लिए। तो ये हमारी चलो मजलिस तावीजात को एक काम मिल गया, और 3 दिन के मदनी काफले की फीस देते जाओ लेते जाओ।
लूटने वाला
साव मुफ्त है, हजारों को बेचारे कहां से देंगे।
लूटने वाला कोई एक एक मिनट नहीं देता, आप तीन दिन से मांग रहे हो।
अब तीन दिन का मदनी काफिला तो देना, इतना कीमती मोबाइल को अगर प्रोटेक्शन के लिए कुछ मिल जाता हथियार। बल्कि 12 दिन का दे दो ना मदनी कोर्स। अब मैं तो देखो मोबाइल भी बचाने की तरकीब कर रहे हैं और आखिरत भी बेहतर बनाने की तरकीब कर रहे हैं, अजाब से बचाने की तरकीब कर रहे हैं कि मदनी काफिले में सफर भी अजाब से बचाने वाला है और 12 रोजा मदनी कोर्स भी अजाब से बचाने वाला है, जन्नत दिलाने वाले काम है ये।
नहीं ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा और काफी हो सकता है कि इस्लामी भाइयों के लिए एक तस्कीन का सबब बन जाए।
मजलिस के इस्लामी भाई अभी होंगे नहीं, हाँ सारे सारे सुन नहीं रहे होंगे, ये तो ना बोल देगा हमारे पास नहीं है तावीज।
नहीं तावीज तो अभी इस्लाम भाई आ गए मेरे पास, कह रहे हैं हरकारा का जो तावीज है उन्होंने लपेट के मोबाइल में रखा हुआ है।
अच्छा पहले प्रैक्टिकल किया हुआ है,
कह रहे वो कई मरतबा गिरा भी उससे भी बच गया और कई मरतबा चोरी गुम हुआ वो भी मिल गया वापस, तो जब से रखा हुआ है
अभी तो निकल पड़ी।
अभी देना शुरू किया नहीं है, अब देना शुरू किया नहीं ना, बाहर आनी शुरू हो गई है।
नहीं तो ये जिनको बारे मिल गई है वो तो फिर 12 दिन तो हाथों हाथ कर ही लेना।
बस 12 दिन 12 माह 25 माह यार कुछ ऐसा नहीं करो यार, रमजान में वैसे भी नेकियों का अजर बढ़ जाता है ना।
अच्छा ये है तो भी तावीजात
करने का भी रुझान बढ़ जाता है तो ज्यादा दिन।
अरे ये मोबाइल वाले तावीजात मस्जिद के सुनाए भाई है, इन्होंने अपना काम किया हुआ है।
अरे खुद बनाया हो जरूरी नहीं,
नहीं यही कह रहा हूँ कि इन्होंने इसको इस काम में ले लिया अरकारा को।
ये दो असमा का, ये दो असमा के हरूफ अबजद है, ये आदाद का है वो 34 का नक्श है ये। इसमें तहरीर तो हम लोग मदीना मदीना बकी बकी इस तरह लिखते थे, पहले तो मैं लिखता था, आप पता नहीं ये लोग लिखते नहीं लिखते, लिखते तो होंगे जो दिया इनको तरीका। तो ये हाँ तो वो है दरअसल वो हरकारा नक्श यानी अदद का फिगर लिखे जाते हैं उसमें, लेकिन ये मखसूस तरीका है, खाली लफ्ज 34 लिख देना काफी नहीं है, 16 खाने का नक्श चाहिए।
इसमें तशवीश नहीं होती होगी कि आम नाजरीन को कहे यार ये क्या तावीज ने मोबाइल ने ये नक्श ने या उल्म अबजद ने क्या क्या लेकर बैठे हैं यार, एक ऐसा नया जहन है मिसाल के तौर पर इसको कुछ मुतमईन करे ना।
हाँ तो ये भी ज्योमेट्री अलजेब्रा ने पता नहीं क्या क्या लेके बैठे होते हैं यार, आवाम के सर से जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं उनके पल्ले ही ना पड़े। ये दो लफ्ज मैंने बोले ना ये भी एक तादाद होगी इनके पल्ले नहीं पड़ा होगा, समझे। तो अब ये हर बात हर एक की समझ में आ जाए
जरूर,
ये तो हर एक मुमकिन ही नहीं है, ऐसी बेशुमार इस्तिलाहत होती हैं जो नहीं पल्ले पड़ती, अंग्रेजी लाख जानता हो ऐसी इस्तिलाहत होती है अंग्रेजी की कि उनको पल्ले ना पड़े, उनके लिए नई चीज होती है।
एहसास से कमतरी का इलाज बता दीजिए। मैं वैसे ये 7 पिलर सर कर दूंगा, कईयों को एहसास से कमतरी होता है, एहसास से कमतरी है क्या और ये कैसे हो जाता है?
नफ्सियाती इस्तिलाह और मतलब मैंने क्या इसके बारे में कुछ पढ़ा तो है कहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ शरई तौर पर कोई इसका कलाम को पढ़ना याद नहीं है, वो शायद ये इसी तरह के लोग लिखते भी होंगे इसको, ऐसा से कमतरी ऐसा से बरतरी, यानी अपने आप को कुछ समझना ऐसा से बरतरी, अपने आप को सबसे नीचा समझना ऐसा से कमतरी, अगर आजिजी है तो अच्छी चीज है, अब अल्लाह बेहतर जाने ये क्या है।
तो फेयर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी कि एक तो है आजिजी, बाबा आजिजी करता है, लेकिन एक शख्स बस ये समझता है यार मैं नहीं कर सकता यार, ये मैं नहीं कर सकता, और उसको एतमाद नहीं होता उसको अपने ऊपर, या बहुत सारी इसमें अपने अंदर वो कमजोरियां पाता है, और ये बाज़ औक़ात कहते उस वक्त भी होता है कि जब किसी को आप मतलब के बचपन से ही या इस तरह उसको बोलते रहे ना, अब तू क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, डब्बा है डब्बा, बेवकूफ किधर का, ये सारी चीजें उसको जब कहते कहते जब जमा हो जाए ना, तो वो बहुत कुछ करने की पोजीशन में हो भी ना तो वो अपनी हिम्मत नहीं ला पाता, और उसको लगता है कि यार नहीं यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आज तक कुछ किया है कि मैं कुछ कर सकूंगा, एक तो इनके सारन कहता है, और एक उसके अंदर वाकई इसकी एतमाद ही की कमी होती है और वो अपने आप को उस काम करने के लिए नहीं तैयार कर पाता, तो बाद वहां भी कहते हैं कि ये उसके उसके लिए कहते यार लगता है अब ऐसा से कम तरीका शिकार हो, अब हिम्मत करें, अब आगे आए, अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा, मगर वो हिम्मत नहीं कर पा रहा होता।
मगर इसको ये कहना कि आप ऐसा से कम तरीका शिकार मालूम होते हैं, ये भी एक है तो जहर में बुझा हुआ तीर, किसी को बोलो ना क्या यार ये बहुत गुस्सा वाला है, जला लिए जला ली, अब वो जला ली है समझे, इसका जहन बन जाता है कि मैं तो हूं ही गुस्से वाला, और किसी को बोला यार ये माशाल्लाह बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, अब अंगारा भी होगा ना बहुत ठंडा हो जाएगा।
मोहम्मद जफरुल्ला तारी कश्मीर के शहर पूना से मेरा ताल्लुक है। ये मदीना डायरी सफा 31 पर खुतबे के साथ मदनी फूल लिखे हैं। इसमें पहला मदनी फूल है कि हदीस पाक में कि जिसने जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांगी उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। इसके एक माना यह है कि उस पर चढ़कर लोग जहन्नम में दाखिल होंगे। इसमें सवाल ये करना है कि एक इस्लामी मस्जिद में आए जुमा के वक्त, पहली सफ में जगह खाली है, इसके बावजूद बाद इस्लामी पीछे बैठे होते हैं, तो क्या उस इस्लामी भाई को इजाजत होगी कि वो इन इस्लामियों से गुजर कर पहली सफ में जा बैठे अगर पहली सफ में जगह मौजूद है तो।
खुतबे के दरमियान तो यही है कि जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ मस्जिद के अंदर बैठ जाए, मस्जिद का जो असल मस्जिद ना कि चप्पल उतारने की जगह। अब जैसे आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में ये खुला आसमान जो है तो इस ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद का सहन भी नहीं है, ये लोग सहन बोलते हैं सहन मस्जिद तो मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, ये सहन मस्जिद भी नहीं है, ये फिनाय मस्जिद है। तो इसमें खुतबे के दौरान काफी समय बैठ जाते हैं, यहां नहीं बैठना, ये जो मुंडेर बनी हुई ना इसको क्रॉस कर लें और अब मस्जिद के अंदर बैठ जाए, जो जगह है वहीं बैठ जाए, अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। अब पहली सफ खाली हो या अगली 10 सफे खाली हो मस्जिद में आते ही बैठ जाए, शेक डाउन बस खलास, उठना नहीं है जब तक खुतबा पूरा ना हो जाए।
अब मसला यह है कि इसमें आपने ये बता तो दिया, अब कोई खुतबे के दौरान आ रहा है और वो फलांग रहा है तो दूसरा
सब्र कर बैठ जाओ,
वो क्या जो अब वो जो खुतबे में वो अगले को क्या समझाना बैठेगा?
खुतबे में तो नेकी की दावत देना भी जायज नहीं है, खतीब दे सकता है, खुतबा सुनने वाला चुपका बैठा रहे सब्र करे, इशारे ना करे, बोले नहीं, शिशिश ना करे, बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, ओ उधर जगह उधर बैठ जाओ, ये धंधे ना करे।
जैसे कल जुमा है तो अपने इधर ही को शुरू हो जावे, सुना नहीं था।
हाँ यार ये बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई, मेरे को तवज्जो ही नहीं थी, माशाल्लाह क्या बात है, मेरे शुरा के निगरान की नहीं, वाकई ये कल वाला ये तमाशे शायद बन जाते, कल तो बोला था शाम को ऊंग रहे थे तुम, तो समझ ही गए होंगे उम्मीद है कि कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, किसी को इशारा भी नहीं करना कि बैठ जाओ, खतीब कर सकता है, खतीब बोल भी सकता है बैठ जाओ, खतीब नेकी की दावत दे सकता है, तो ये इक्का दुक्का उर्दू अल्फाज बोल दिया तो हरज नहीं होती इसमें, जैसे यहां बगैर उर्दू के इजलिस बोलेंगे तो वो पीछे मुड़ के देखेगा घबराएगा कि क्या, हालांकि इजलिस बैठ जा अरबी में इजलिस, गैर अरबी में खुतबा देना ये खिलाफ सुन्नत मुतवारिसा है, बुरा है, गैर जैसे उर्दू में अशार पढ़ते हैं कलाम पढ़ते हैं बाज लोग, इसकी मुमानत है। अभी बाद इस नहीं भाई मसरूफ है, कोई खजूर बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, परवाह ही नहीं है क्या कहा जा रहा है, क्या सुनना है, क्या करना है, बेचारे हाँ होशियार वो आते हैं लेकिन वो हम ये जो कर रहे हैं बांट रहे हैं इनको तो पता भी नहीं ना कि हम क्या कह रहे हैं, यानी खुद तो बांट रहे हैं सवाब समझ कर बांट रहे होंगे लेकिन दूसरों को भी बेचारों को महरूम कर रहे हैं मसला सीखने से, ऐसे मौके पर बांटना सवाब नहीं होता जब इल्मे दीन की बात और कुरान और हदीस की बात बयान की जा रही हो, उसको सुनना सवाब होता है जोर से। उन्हें पिछले दिनों कोई वो टैंक लेकर आए थे और खुशबू सब पर डाल रहे थे, अब वो तो मैंने उनको समझाया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो जो सुन रहे हैं इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और सबको ये पानी जिसके भी मुंह पे जाएगा तो वो तो चौंक जाएगा, घबरा जाएगा। मैंने तौबा करवाई थी उसको, वो ऐसा सादतमंद आदमी था, वो ये काम बरसों से मुख्तलिफ महफिलों में करता था। इसके बाद टैंक के साथ मैंने उसको देखा नहीं है, यहाँ देखा जरूर है, तौबा की खड़े होकर उसने देखा। ये तुम सवाब समझ कर रहे हो, ये कार्य सवाब है। हम लोग इल्मे दीन की बात बता रहे हैं, शरीयत के मसले बता रहे हैं, शुरू करके मुंह पर मार दिया फवारा, वो तो गलत फहमियां हो जाएंगी, तकलीफ ईजा भी होती है आदमी को, सबको थोड़ी कोई मजा आता है इस तरह। हमारे गुलाब छिड़कने का भी रवाज है, समझ में तो ये भी नहीं आता, ये लोगों के मुंह पे मारते हैं,
घरों में जो महफिलें होती हैं
डालते हैं, नहीं
घरों में जो महफिलें होती है ना उसमें ये अभी भी है,
छिड़कते हैं, रख दिया जाए, रख दिया जाए, उधर खुशबू उससे आए और ये ऐलान कर दिया जिसको अपने पर डालना उसको इजाजत तो भले डाले भाई, यही समझ में आता है इसका। अब किसी के मुंह पे डालोगे, अब उसको है एलर्जी, अब गुलाब का पानी गया और आग छी करके छींके शुरू हो गई उसकी, उसका तो बेचारे का बेड़ा पार हो गया, नजला लग गया उसको।
इसमें ऐसा भी हुआ हो सकता है कि कोई मौतकिफ घर से आया हो ना नया नया आज पहली बार, तो घर वालों ने खजूरें देकर भेजा होगा, बेटा जाना और जाकर सबको ये पहले जो है ना 2-4 किलो खजूरें जो है ना ये सबको इफ्तार कराना हमारी तरफ से।
सुनने मत देना दीन की बातें, डिस्टर्ब करते रहना, जा बांट जाके, मैं खुलासा कर रहा हूं,
इल्म की कमी की वजह से
बांटो, बांटना मना नहीं है खजूरें, जबकि कोई और मस्जिद की बेहद भी इसका वक्त हो ना, अभी जब मसले बयान हो रहे हैं जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो फिर भले आप खजूरों से इफ्तार करवाएं। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
एक बच्चा खड़ा है, एक शख्स आया और बच्चा जैसे उसको वेलकम खुशामदीद करने के लिए खड़ा है, वो आया और यूं चला गया, ठीक है। दूसरा आदमी आया, बच्चे से हाथ मिलाया, अच्छा अच्छा चला गया। तीसरा आया, अरे माशाल्लाह आप भी खड़े हैं, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज से आप खुशामदीद कहने के लिए खड़े हुए हैं, क्या नाम है बेटा आपका, ठीक है माशाल्लाह चले। तो किताब में लिखा है कि तीसरा आदमी इस बच्चे को हमेशा याद रहेगा, कि ये शुरू के जो दो थे ना वो रुके रुके चले गए, ये तीसरा आदमी विजय लिफ्ट करा कर गया,
जो लिफ्ट नहीं कराएगा वो भी हो सकता याद रहे के साथ याद रहे, ये मुझे लिफ्ट नहीं दिया। लेकिन मैंने बहुत देखा लिफ्ट नहीं कराते यार,
वजह क्या है इसकी, तब अच्छा बास को अगर हम समझा ना, अच्छा ऐसा होना चाहिए था, मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या उसको कुछ अहमियत नहीं देते, या ऐसा लगता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं है, मैं बच्चे को खिलाऊं या ना खिलाऊं, इसकी सेहत में क्या फर्क पड़ता है।
सवाब की नीयत से अगर प्यार करेंगे, कि प्यार करना सुन्नत है, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बकसरत बच्चों को प्यार करना साबित है, बच्चे हाजिर होते थे और पानी का प्याला लकड़ी का प्याला शरीफ होता था, माँ बाप बेचते थे समझदार बच्चों को, तो वो मतलब पानी में हाथ डालकर सरकार का तबर्रुक लाते थे, तबर्रुक पीते थे, हाथ जलवा कर तबर्रुक पीते थे सरकार का, अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा मोहब्बत थे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जात के लिए किसी को ईजा दी ही नहीं, हमेशा प्यार दिया। तो यार बच्चों के फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के बच्चों से फरमाते हैं कि बच्चों दुआ करो उमर बख्शा जाए, तो बहुत छोटे बच्चे शफकत के साथ उनको प्यार देना चाहिए।
अब इसमें मस्जिद के जो इमाम होते हैं इनके लिए कुछ आप मदनी फूल अता करेंगे, क्योंकि देखिए मस्जिद का जो इमाम है ना ये इसकी एक अपनी अहमियत होती है, और शायद महल्ले में अगर किसी का बच्चा पैदा हो तो हर एक के पास कोई अहम मजहबी शख्सियत होती नहीं है, तो वो उसके लिए शायद महल्ले का जो इमाम है वो उसके लिए एक अहम मजहबी शख्सियत कहलाएगा कि यार उसके पास ले जाओ। इमाम अगर ये फरमाना अगर सीख जाए ना तो मुझे लगता है शायद इमाम के पास बच्चों ये शायद इसलिए ना करता हुआ कि यार अभी मैं बैठूंगा नहीं, महल्ले के बच्चे आ जाएंगे मेरे पास,
इनको नहीं बिचारो इतना समझ नहीं होती, तवज्जो नहीं होती, वो नफरत तो याद रह जाती है। वो मुझे इस पर वाकई दो याद आ गए मेरे अपने, एक बार छोटा था मैं, शुरू से हमारे मोहल्ले में वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ ईद मिलादुन नबी बाल मुबारक की ज्यारत होती थी, तो मैं पहुंच जाता था, तो अब वो जोर की नमाज तक होती थी, जोर की नमाज से पहले सलातो सलाम होता था, तो अपने सलातो सलाम से सलातो सलाम में बिल्कुल घुस घुसा कर आगे बिल्कुल माइक के पास, माइक तो कौन देगा अपने को, पढ़ता था सलातो सलाम जैसा आता था। अब वो सफे बनने लगी कि सुन्नत ने जोर की, अपने खड़े हो गए पहली सब में, एक सफेद रिश बुजुर्ग ने देखा, ये मेरा कांडा पकड़ा बाजू है चहल करके मेरे को पीछे ही घसीट कर पीछे भेज दिया। ये नफरत ऐसी याद है मुझे, मुझे मेरे रब ने बचाया, वरना मैं कहीं थिएटर में जाके गिरता, कहीं बदमाशों की टोलियों में जाके गिरता, मेरे रब ने बचा लिया, मैं मस्जिद में हूँ, वरना ये नन्ना सा दिल खुदा की कसम ऐसा टूटा कि जिसकी। मैंने उस बुजुर्ग को सफेद रिश दाढ़ी वाले को बारहा माफ किया है, मैंने माफ किया उनको, अल्लाह बेचारों को मगफिरत करे, अब तो जिंदा रहने का कोई तसव्वुर नहीं है उनका, वो तो कोई 60 साल पुरानी बात होगी यार।
मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अत्तारी, मैं चाइना में रहता हूँ, माँ बाबा मैं उनका पाँव चूमता हूँ, जब वो सो रहे होंगे या उठे होंगे कैसे भी चूम लो, राइट पाँव चूमो या लेफ्ट पाँव चूमो, आप फरमाइए।
माशाल्लाह, ये सो रहे हो या जाग रहे हो, अपने पाँव चूमने और राइट चूमने या लेफ्ट चूमने, जो आसानी से आपकी तरकीब में जो लेग आ गया ना वो चूम ले। अम्मी अब्बू दोनों के पाँव चूम सकते हैं, अम्मी के पाँव के बारे में तो रिवायत है कि जिसने माँ के कदम चूमे उसने जन्नत की चौखट को बोसा दिया, यानी जन्नत के गेट को चूमा, चौखट माने गेट दरवाजा, तो बाप के भी पांव चूम सकते हैं, इसमें भी सवाब मिलेगा, हाथ पांव चूम सकते हैं, यहां तक कि अगर माँ बाप बेनमाजी हैं तब भी चूम सकते हैं, माँ बाप का अपना औलाद के लिए एहतराम है। तो सो रहे हो तब भी चूम सकते हैं, जाग रहे हो तब भी चूम सकते हैं, आप को जब मौका मिले, कभी जागने में चूम ले कभी सोने में चूम ले, लेकिन माँ बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत जब कब बढ़ेगी कि जब उनको पता चलेगा कि इसने हाथ पांव चूमे, तो सोते में पता नहीं चलेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मैंने आपके पांव चूमे थे।
ये यूं नहीं उठा कर चूमने, अम्मी उठना, मेरे को पांव चूमने का दिल हो रहा है,
ये उठा भी दे,
आई उठा कर चूमे तो वहां फिर नींद में फिर जो करे करे।
बाज माँ बाप मना भी करते हैं, नहीं चूमने देते बच्चे, बच्चों को चूमने देना चाहिए, इसको इनको बेचारों को समझ कितनी पड़े।
वाली आया है, क्या मुझे अपने घर में अब्बू और भाई के सामने सर पर दुपट्टा पहनना वाजिब है, और अगर कभी गलती से दुपट्टा सर से उतर जाए तो क्या मेरा भाई सबके सामने मुझे मार सकता है, प्लीज बापा मुझे इसका जवाब अता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखेगा। ये कोई दुखी,
अब तो खतरा ही है, अगर ये सब सुनते होंगे ना घर वाले वाला, अच्छा तूने वहां तक पहुंचा दिया,
अब ये पता नहीं कितनों के घरों की स्टोरी होगी।
अल्लाह वो दिन करे कि दुपट्टे की पाबंदियां शुरू हों। तो खैर, वो भाई और बाप तो महारिम है, तो इनके सामने अगर सर के बाल जाहिर होते हैं या दुपट्टा उतरता है तो कोई हर्ज नहीं है, इस पे भाई मारता है तो उसको अब फिर ये बोलेगी तू जालिम है, मजीद मारेगा वो, तो वारा लिए कि मैं जो कहना था वो कह गया, तो भाई को नहीं मारना चाहिए, बाप को भी इस बात पर कि सिर्फ वो आपके सामने दुपट्टा उतार देती है सर से, तो नहीं मारना चाहिए, मारना जुल्म है, और तौबा भी करनी होगी, जिसको मारा उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी।
वैसे मारपीट घर में भाई बहनों में होनी भी नहीं चाहिए, और अगर भाई बहनों को शिकायत हो तो वो अपने वालिदैन से शिकायत कर दें और वालिदैन उसमें अदल और इंसाफ से काम लें, लेकिन घर में यही माहौल मेरा ख्याल होना चाहिए कि ना बहनें भाई के आगे बदतमीजी करें, ना भाई बहनों के आगे हाथ चलाएं, यानी इनमें जबान और हाथ का जो इस्तेमाल है ये शरीयत के दायरे में ही रखना चाहिए।
भाई और बहन, बहन को भाई मारे ये तो बहुत दूर की बात है, ये कोई बाजू का रफ होता है खानदान,
تھرڈ کلاس خاندان ہوتے ہیں نا، تو ان میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہوں گے، باقی عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی بہن کو بات بات پہ مار دھاڑ کرتا ہو، اللہ بہتر جانے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے. اور اگر دوپٹے کی تلقین بھی کرنی تو نرمی سے کی جائے، اور وہ بھی نامحرموں کے آگے تو کمپلسری، خالی دوپٹے سے بھی کیا، اگر یہ مروجہ دوپٹہ ہے تو یہ پردہ تھوڑی ہے. اگر یہ اتنا سا دوپٹہ جو گلے میں لپیٹ لیا جاتا ہے یا سر پہ رکھ لیا جاتا ہے اور وہ چٹیاں لہرا رہی ہوتی ہے، تو یہ دوپٹہ کافی نہیں ہے. بال چمک رہے ہوں یہ دوپٹہ بھی کافی نہیں ہے، موٹی چادر ہو جس سے بال نظر بھی نہ آئے اور جھلکیں بھی نہیں، چمکیں بھی نہیں، بال ایسے چھپ جائے اس کے آر پار بھی نظر نہ آئے، ایسا موٹا دوپٹہ ہو.
ویسے گھروں میں یہ ماحول ملتا ہے، بابا کے والد صاحب وغیرہ اس طرح آتے ہیں نا، تو بچیاں بیٹیاں اپنے سروں کو ادب کی وجہ سے ڈھانپ لیتی ہیں،
وہ الگ بات ہے. لیکن بھائی اس پر مارے کہ میرا ادب کر، یہ کیسے ہوا؟ ریٹھا ایک بوٹی آتی ہے گول گول، یہ مل جائے گی پنساریوں سے. پنساری کس کو بولتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. پنساری پان والے کو نہیں بولتے، پنساری دیسی دوائیں بیچنے والے کو بولتے ہیں. جیسے کہ وہ انگلش دواؤں والے کو میڈیکل اسٹور بولتے ہیں نا، تو اس کو پنساری کی دکان، یہ دیسی دوا کی دکان کو بولتے ہیں. تو یہ دیسی دوا کی دکان پر ریٹھا ملتا ہے، یہ ریٹھے دو تین چار اس کو بھگو لیں، رات بھر بھگو کر رکھیں یا اس کو گرم کر لیں پانی میں، گرم کرنے سے آسانی ہو جاتی ہے. تو گرم کر کے اس میں جھاگ بنے گا، خوشبو بھی قدرتی اس میں ہوتی ہے، اور اس سے سر دھونے سے بال بھی مضبوط ہوں گے، شاید لمبے بھی ہوں گے. اس کے فوائد ہیں مطلب بالوں کے لیے، اور یہ جوئیں بھی انشاءاللہ سے مر جائیں گی اور آپ کے بال صحت مند ہو جائیں گے. یہ لیکن اب جو یہ صابن ہے نا، ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، ان میں کاسٹک بھی ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ ہوتی ہے، تو یہ بال ٹوٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں بال. تو ان سے صابن سے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں عام طور پہ. لیکن یہ ریٹھا جو فائدے مند ہے، ہم بچپن میں ریٹھے ہی سے نہاتے تھے، تو آنکھوں میں جاتا تو جلتا تھا، آنکھ جلتی تھی، ماں پکڑ کے نہلاتی تھی، یہ یاد ہے میرے کو چھوٹا تھا جب. تو وہ ہمارے یہاں صابن یہ ریٹھے کا، ان دنوں وہ ریٹھے کا دستور ہوگا، ریٹھے میں وہ ناریل کا چھلکا جو ہوتا ہے نا، یہ بھگو گے اس سے رگڑ. اب تو ایک سے ایک پلاسٹک کے اور برش رگڑنے کے آگے، اس طرح ہم نہاتے تھے بچپن میں. بال جھڑنے کا کبھی سنا نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں تھا مجھے. یعنی اب تو بال بہت جھڑتے ہیں، جس کو دیکھو گنج ہوا پڑا ہے. اب ریٹھا ہے دشوار کام، خیر ہم بھی، میں بھی صابن ہی استعمال کرتا ہوں، یار اتنی محنت کون کرے. اب تو شیمپو، اب یہ پگھلا ہوا صابن ہی کی کوئی ہوگی صورت، کر میں صابن استعمال کرتا ہوں، شیمپو کا عام طور پر نہیں کرتا استعمال، میرے پاس شیمپو نہیں ہے. یہ تو جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ 20 قسم کی بوتلیں رکھتے ہیں، طرح طرح کی رنگ برنگی، مجھے سمجھ بھی نہیں آتی اس میں ہے کیا کیا، انہیں کچھ اپنے ڈالے نہیں تیزاب ہو تو، مہمان تو بن کہیں گھروں پہ تو جانا پڑتا ہے نا، تو صابن پر یا وہ شیمپو کی بوتل کا منہ یاد کر لیا میں نے، اس کا منہ جو ہے نا وہ چونچ والا ہوتا ہے، یوں دباؤ اس میں نکلتا ہے.
نہیں نہیں اب اس میں بھی نہیں ہے بابا، بہت
کچھ تیزاب ہوتا ہے کیا؟
تیزاب نہیں ہوتا، یہ ہوتا اتفاق ہمارے ساتھ بھی، تو بس وہ اس پر دیکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا غور سے کہ شیمپو لکھا ہوا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوا تھا کہ کچھ لگا لیا تھا نا، تو وہ شیمپو والا وہ مطلب وہ جھاگ بنا نہیں نا، تو فوراً میں نے بال دھو لیے. تو پھر میں نے کہا یار یہ کیا اندر میں چیز، تو پھر کوئی سمجھایا کیا ہوا، میں کہا ڈر نہ لگے یار، आदमी लगा हुए ना पानी डाले ना पता चले तो सारे बाल लेके निकल गया वो। तो यूं अपने को तो दांत नहीं समझ पड़ रही थी। तो ये होता है कि आजकल बाथरूम में 10 से 12 किस्म के सब अलग अलग चीजें होती है। असल में इसमें एक आदमी के लिए 12-15 चीजें हो ये जरूरी नहीं है। यानी बच्चे अलग इस्तेमाल करते होंगे तो बच्चियां अलग इस्तेमाल करती होंगे। आजकल तो मेल और फीमेल सब अलग अलग हो गए ना, हर शी मैन वीमेन। तो ये
दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए।
किड्स के लिए अलग लिखा
अलग
हुआ
अलग
है, बच्चियों के लिए अलग, तो बच्चों के लिए अलग। तो आइटम जितनी वेराइटियां बनाएंगे इतना बिकेगा।
ईद ईद सईद ईद सईद ईद सईद।